अरुणिमा ने जैसे ही रूबी का जिक्र किया, आस्तिक के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो अरुणिमा को देखते हुए बोला, तो तुम्हें जलन हो रही है? अरुणिमा मुंह बनाते हुए किचन की तरफ जाने लगती है और उसने इतराते हुए कहा, मुझे क्यों जलन होने लगी? किसी रूबी, पन्ना, डायमंड से मेरा उससे क्या लेना देना है? वो किचन काउंटर पर आती है और दो कप निकालकर उसने कॉफ़ी बनानी शुरू ही किया था कि तभी आस्तिक वहां आ जाता है और उसने अरुणिमा का हाथ पकड़कर उसे एक झटके से अपनी तरफ घुमा दिया और अपने दोनों हाथ किचन काउंटर पर रखकर उसकी तरफ झुकते हुए कहता है, उससे नहीं, पर मुझे तो है ना? पर अरुणिमा ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर धकेला और रूठते हुए कहा, नहीं, मेरा तुमसे भी कोई लेना देना नहीं है। शायद तुम भूल रहे हो, हमारा डिवोर्स हो चुका है और तुम मेरे एक्स हस्बैंड हो। पर तभी आस्तिक ने अरुणिमा की कलाई पकड़ी और उसे घुमाकर उसकी कमर में लगा दिया, जिससे अरुणिमा एक झटके से आस्तिक के इतने करीब आ जाती है कि वो आस्तिक के सीने से लगी हुई थी। उन दोनों का शरीर पूरी तरह से चिपका हुआ था और आस्तिक अरुणिमा के दोनों हाथों को उसकी पीठ से लगाते हुए उसके चेहरे पर झुककर बहुत ही सरगोशी के साथ कहता है, एक्स वाई जेड, ये सिर्फ कागज के पन्नों तक ही सीमित रहे तो बेहतर है। डिवोर्स तुमने मांगा था और तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुमसे एक साल तक अलग रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि उस कागज के टुकड़े को मैंने अपनी किस्मत मान ली है। तुम कल भी मेरी थी, आज भी मेरी हो और जब तक तुम्हारी सांस है तब तक मेरी रहोगी। समझ में आया, मिस्टर आस्तिक रायचंद? अरुणिमा की आंखों में नमी आ गई। उसने आस्तिक की आंखों में देखा, आज भी वही चमक, वही अंदाज और वही जुनून है जो अरुणिमा के हर हिस्से पर अपना अधिकार कर चुका है। आस्तिक अरुणिमा के चेहरे के और करीब आता है। उसके गाल अरुणिमा के गालों से टकरा रहे थे। उसने धीरे से अपने गालों से अरुणिमा की कोमल गालों पर सहलाना शुरू किया। आस्तिक की हल्की नुकीली दाढ़ी अरुणिमा की नाजुक गालों पर जलन का एहसास कर रही थी, लेकिन अरुणिमा इतने समय बाद आस्तिक की खुशबू में समाई हुई थी। आस्तिक ने उसके कानों के पास जाते हुए मदहोशी से कहा, तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें वक्त चाहिए हर चीज़ को फिर से शुरू करने के लिए। तुम्हारा वक्त पूरा हुआ और आज रात से मेरा वक्त शुरू होता है, तो चलो आज रात हमारे रिश्ते की शुरुआत नए सिरे से करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कि हम पहली बार मिल रहे हैं, एक अजनबी की तरह जिनका पहले कभी कोई रिश्ता ना रहा हो, और आज पहली बार हम शुरू से शुरू करेंगे। आस्तिक ये बोलकर धीरे से अरुणिमा के गालों से अलग होता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। अरुणिमा अपनी आंखों में फिर से आस्तिक के लिए प्यार लिए उससे बोली, मैं अजनबियों के साथ ज्यादा जान पहचान नहीं बढ़ाती। अचानक से आस्तिक ने अरुणिमा की दोनों कलाइयों को छोड़ दिया और धीरे से उसके शर्ट के अंदर अपना हाथ डालकर उसने अरुणिमा के गारमेंट के हक को खोल दिया, जिसे अरुणिमा एक पल के लिए सहम जाती है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। लेकिन आस्तिक अपनी आंखों में हसरत लेकर उसे देखते हुए कहता है, लेकिन इस अजनबी को तुम पसंद आ गई हो और अब ये अजनबी तुम्हारे साथ अपनी जान पहचान बढ़ाना चाहता है, या तो तुम्हारी मर्जी हो या फिर मेरी चाहत। अरुणिमा के पूरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए थे, उसकी आंखों में चमक आ गई थी और होंठ फड़फड़ाने लगे थे। आस्तिक ने उसकी खुली हुई पीठ पर अपना हाथ रखा और उसे धीरे धीरे सहलाना शुरू कर दिया। अरुणिमा की आंखें बंद हो गईं और उसने अपना निचला होंठ अपने दांतों तले दबा लिया। आस्तिक के एक जीवन में ऐसा पागलपन था कि उसके पहले स्पर्श के साथ ही अरुणिमा पिघल गई। आस्तिक उसके कानों में आता है और अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए कहता है, तुम आज भी मेरे टच से खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती हो ना? आ स्टिक प्लीज। अरुणिमा ने अपने कांपते हुए शब्दों से आस्तिक को रोकने की कोशिश की, लेकिन आस्तिक उसकी बंद आंखों को देखते हुए मुस्कुरा जाता है। उसने अरुणिमा के करीब आए और धीरे से अपनी उंगलियां उसकी नाभि के आसपास सहलाते हुए कहा, मैं रुक जाऊंगा, बस एक बार कहो, कह दो कि तुम मुझे नहीं चाहती हो, कह दो कि जो मैं कर रहा हूँ उससे तुम एक्साइटेड नहीं हो रही हो, कह दो कि मेरी छूने से तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा है, कह दो इस एक साल में तुमने मेरे वजूद को मिस नहीं किया है, रातों में करवट बदलते हुए तुमने तकिए को गले लगाकर मुझे इमेजिन नहीं किया है, बस एक बार कह दो। लेकिन अरुणिमा अपनी आंखें बंद किए हुए तेजी से सांस ले रही थी। उसके कानों में आस्तिक की आवाज तो जा रही थी, लेकिन उसकी सारी इंद्रियां इस समय उसके कंट्रोल से बाहर हो गई थीं, क्योंकि आस्तिक का हर एक शब्द सच था। उसने हर रात आस्तिक के होने को इमेजिन किया था और कई बार तकिए को गले लगाकर उसने बेसब्री से रातें बिताई थीं। आस्तिक के स्पर्श ने उसे सच में बेकाबू कर दिया था। वो उसके एक टच से पिघल गई थी और वो ये कभी भी नहीं कहेगी कि उसे आस्तिक नहीं चाहिए। उसे आस्तिक हर पल में चाहिए, हर समय चाहिए, हर लम्हे में चाहिए, और इस वक्त तो उसे आस्तिक की ऐसी तलब हो रही थी जो उसने पिछले एक साल से अपने अंदर कैद कर रखी थी। उसे तड़पता हुआ देख आस्तिक को और ज्यादा अच्छा लग रहा था। ये तड़प सिर्फ अरुणिमा की नहीं थी बल्कि आस्तिक की भी थी। वो चाहता तो खुद आगे बढ़ सकता था, लेकिन उसे अरुणिमा की तरफ देखनी थी और उसका ये इंतजार जल्दी पूरा हुआ। अरुणिमा अपनी आंखें खोलकर आस्तिक को देखती है, जो अपनी आंखों में मदहोशी, प्यार और अरुणिमा की चाहत लिए अभी भी उसे देख रहा था। और अगली ही पल अरुणिमा ने अपने दोनों हाथ आस्तिक के गर्दन पर रखे और खुद आगे बढ़कर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए।
उन दोनों के ही सब्र का बांध टूट गया और दोनों ही एक दूसरे के होठों पर बेसब्र होकर टूट पड़े। आस्तिक ने अरुणिमा की कमर पर हाथ रखा और उसे एक झटके से लिफ्ट करते हुए अपने गोद में उठा लिया। अरुणिमा ने भी अपने दोनों पैर आस्तिक के कमर पर लपेट दिए और आस्तिक उसे खामे हुए किचन से बाहर निकलता है। वो उसे सीधे अरुणिमा के कमरे में ले जाता है और बेड पर पटक देता है। इस बीच उनकी किस कहीं से भी ब्रेक नहीं हुई थी। आज रात वो दोनों फिर से एक शुरुआत करने वाले थे। एक साल का इंतजार और नई शुरुआत का इंतजार दोनों खत्म हो चुका था। आज ना तो कोई सौदा था और ना ही कोई समझौता थे तो बस दो लोग जो एक दूसरे को पाने के लिए तड़प रहे थे। देखते हैं कल का सूरज उनके इस नए रिश्ते में कौन सी रोशनी बिखेरता है। सबसे पहले उन रीडर का दिल से शुक्रिया जो कहानी को पढ़ते हैं और राइटर को राइटर समझते हैं और वे समझते हैं कि कहानी एक फिक्शन है। अब बात करते हैं उन राइटर की जिन्हें लगता है कि लेखक की किसी भी नॉवेल्स की कहानी को पढ़कर वे उसे लेखक के ऊपर एहसान कर रहे हैं। तो ऐसे लोग पहली फुर्सत में निकले, तुम्हारे पढ़ने या नहीं पढ़ने से मेरी कहानी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एप्लीकेशन की दुनिया में नॉवेल्स की कमी नहीं है, मेरी छोड़ो किसी और पर चले जाओ। लेकिन अगर समझते हो कि एक कॉइन और एक डायमंड लगाकर तुमने लेखक को खरीद लिया है तो अपनी इस छोटी सोच को अपनी जेब में रखो और मेरी नॉवेल से अभी के अभी निकल जाओ। कोई कमेंट में आकर मुझे ज्ञान नहीं देगा कि मुझे कैसे लिखना चाहिए या फिर मुझे इस कहानी में आगे क्या करना चाहिए। अगर इतनी ही समझ है तो एप्लीकेशन में सबको मौका दिया है, तुम अपनी कहानी लिख लो। तुम्हारे दो ऐड, एक कॉइन या एक डायमंड से मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। किसी ने मेरी पिछली कहानी छोड़ दी है, अगर मैं इस कहानी को खराब किया है तो वे ये कहानी भी छोड़ देंगे। ऐसे लिखने वाले और सोच रखने वाले जो भी रीडर यहाँ मौजूद है पहली फुर्सत में निकले।
कहानी शुरू की थी तब किसी से पूछ कर नहीं की थी और इसके आने वाले एपिसोड भी किसी से पूछ कर नहीं लिखूंगी। पढ़ना है प्यार से पढ़ो और एक काल्पनिक दुनिया समझ कर पढ़ो तो कहानी पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और लिखने वालों की नज़र में एक अच्छे रीडर की कैटेगरी में भी आओगे। लेकिन नहीं, जो गंदगी दिमाग में है वो कमेंट में करके जाओगे और हेटर की लिस्ट में आकर अपना ही नाम खराब करोगे। पहले भी कई एपिसोड में कह चुकी हूँ कि ये एक फिक्शन दुनिया है, एक काल्पनिक कहानी है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन घटिया सोच वाले लोग एक काल्पनिक किरदार के लिए इज्जत मांगते हैं, उसके लिए सम्मान मांगते हैं और उसके लिए सब कुछ अच्छा मांगते हैं। लेकिन एक जीती जागती राइटर के लिए ना तो उनकी आंखों में सम्मान दिखता है और ना ही शब्दों में सम्मान की भावना होती है। मैं बहुत हद तक नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर करती हूँ और ऐसे लोगों को इग्नोर करती हूँ जो ऐसी सोच रखते हैं, लेकिन जब बात पर्सनल हेट की हो तब जवाब देना बनता है। सो बात की एक बात, मैं वही लिखती हूँ जो स्टोरी की रिक्वायरमेंट होती है। जिन्हें पसंद आती है वे कहानी को पसंद करके यहाँ तक पहुँच चुके हैं और जिन्हें नहीं पसंद आती है वे पहले एपिसोड से ही नेगेटिव कमेंट करते हैं। तो मैं ये भी नहीं कहूँगी कि उन्हें पसंद नहीं आती है, क्योंकि 100-200 एपिसोड पर भी नेगेटिव कमेंट करने वालों को कहानी तो पसंद आ रही है और वे मेरी कहानी छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। बस ये है कि उनके अंदर की फ्रस्ट्रेशन नहीं जा रहा है कि इस कहानी में ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों नहीं हो रहा जैसा वे सोच रहे हैं, और उनको लगता है जैसा वे सोच रहे हैं लेखक वही लिखे। तो डियर रीडर्स, आपके पास भी लिखने का ऑप्शन है, खुद जाकर अपनी कहानी लिख लीजिए और वही लिखिए जो आप लिखना चाहते हैं। और ये लास्ट वाली बात, कोई भी मरकर कोई काम नहीं करता है। तुम लोग भी तो कहानी पढ़ने तभी आते हो ना जब फ्री टाइम होता है, तो लेखक से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो हमेशा फ्री होकर तुम्हारे लिए एपिसोड लेकर बैठी रहेगी। वो भी इंसान है, बीमार पड़ सकती है, उसकी भी हेल्थ है, उसकी भी फैमिली है, उसके साथ भी कोई इशू हो सकता है। एपिसोड नहीं देने पर, छोटे देने पर या फिर तुम्हारी पसंद के ना देने पर जो उसे नेगेटिव कमेंट करते हो, कभी इसका खुद के ऊपर इस्तेमाल करके देखो। जानती हूँ ऐसे घटिया सोच वाले कहीं आगे जाकर तरक्की नहीं करेंगे। जो अब तक मेरी कहानी में पड़े हुए हैं वे आगे भी पड़े रहेंगे और ऐसे कमेंट मुझे आगे भी मिलेंगे और उसका जवाब मैं आगे भी दूंगी। तो जिन लोगों को लगता है कि मैं इस राइटर पर एहसान कर रही हूँ इसकी कहानी को पलकर, वे अभी के अभी यहाँ से निकल जाएं। तुम जाओगे 100 आ जाएंगे। और मुझे अगर एक सिंगल कमेंट मिला ये कहकर कि मुझे लिखना नहीं आता है, तो एप्लीकेशन की तरफ से क्रिया के लिए तैयार रहना।